दिन भर तारीख 10 जनवरी दिन गुरुवार, मैं हूँ मानसी दास। 29 जनवरी तक के लिए टला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामला।
तुरंत जस्टिस यूयू ललित ने श्रावक के आई एम रिक्यूजिंग फ्रॉम द केस, मैं इस केस को सुनवाई में डर नहीं रहूंगा।
सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती।
ये जो 10% कोटा है ये 50% में ही दिया जाए और इकोनॉमिक कोटा होना चाहिए, धीरे धीरे कास्ट कोटा खत्म होकर के इकोनॉमिक कोटा कम्प्लीटली आना चाहिए।
4 सप्ताह बीते, अब तक मेघालय की कोयला खान से नहीं निकाले जा सके मजदूर।
पानी बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, वाटर लेवल जो है इधर में पहाड़ में वो बहुत ही रप्चर हो गया, बहुत दिक्कत है साहब।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। बीते साल दिसंबर में बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्तों में शामिल शिखर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिखर अग्रवाल भाजपा के स्थानीय नेता हैं। इस हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक स्थानीय नौजवान की मौत हो गई थी। अग्रवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया,
3 दिसंबर को सियाना हिंसा कांड में आज एक अभियुक्त शिखर अग्रवाल की प्रातः गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। शिखर अग्रवाल को हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। शिखर अग्रवाल को लेकर के इस पूरे मामले में 36 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ जो गोकशी की घटना हुई थी उसमें भी 7 लोगों को गिरफ्तार करके अब तक जेल भेजा जा चुका है।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कैथोलिक चर्च का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक नतीजों से उसके अपने नतीजे मेल नहीं खा रहे हैं। कॉन्गो में ये चर्च बेहद प्रभावशाली है और हर चुनाव क्षेत्र में इसने अपने पर्यवेक्षक तैनात किए थे। चुनाव आयोग का कहना है कि विपक्षी उम्मीदवार फेलिक्स शिसेकेडी ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन एक और विपक्षी उम्मीदवार मार्टिन फायुलू ने नतीजों को नकार दिया है और इसे चुनावी तख्ता पलट कहा है। बेल्जियम और फ्रांस ने भी नतीजों पर शक जाहिर किया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जां वेले द्रियान ने कहा,
Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats
चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जो एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नतीजे घोषित किए गए वो उन नतीजों से मेल नहीं खा रहे हैं जो हमने देखे हैं। मुझे लगता है कि हमें शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की ज़रूरत है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जोर देकर कहा है कि अमरीका के सीरिया से सेना वापस बुलाने और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में कोई विरोधाभास नहीं है। मिस्र यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही अमरीकी सैनिक वापस लौट जाएंगे, लेकिन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पोम्पियो ने कहा,
There's no contradiction whatsoever. This is a story made up by the media. That's fine. You all write what you'd like.
किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, ये कहानी मीडिया ने गढ़ी है, कोई बात नहीं, आप लोग जो चाहे लिख सकते हैं। राष्ट्रपति बिल्कुल स्पष्ट हैं। अमरीकी सुरक्षा सलाहकार बोल्टन और मैं भी इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। चरमपंथी इस्लामिक आतंकवाद का खतरा वास्तविक है, इस्लामिक स्टेट है और देश के कई इलाकों में हम उससे लड़ रहे हैं। आईएस को रोकने की हमारी प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी। पोम्पियो के शब्द। अब से कुछ देर बाद काहिरा में दिए जाने वाले एक भाषण में पोम्पियो मध्य पूर्व के लिए अमरीका की नई नीति की घोषणा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते महीने अचानक फैसला लेते हुए सीरिया से सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से मध्य पूर्व को लेकर अमरीकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठे थे। यमन में हूती विद्रोहियों ने सरकारी सेना के ठिकाने अल अनद अड्डे पर एक ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 6 सैनिक मारे गए हैं। इस हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के घायल होने की भी खबरें हैं। यमन सरकार का कहना है कि ये हमला बताता है कि हूती शांति के लिए तैयार नहीं हैं। सऊदी समर्थित यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच हुए शांति समझौते के तहत हुदैदा में लड़ाई रुकी हुई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले से, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। आज इस मामले में नाटकीय मोड़ तब आया जब 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ में शामिल एक जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। जस्टिस ललित ने यह फैसला मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता के वकील राजीव धवन की आपत्ति के बाद किया कि जस्टिस यूयू ललित अयोध्या के एक आपराधिक मामले में बतौर वकील पेश हो चुके हैं। आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती से।
सबको पता है कि ये काफी सेंसिटिव केस है और आज की जो सुनवाई थी एकदम क्रुशियल हियरिंग थी। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी, हियरिंग देर तक चलेगी या हियरिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब जो एंटिसिपेट किया गया था वो बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि सुनवाई शुरू हुई लगभग 10:35 के आसपास। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से डॉक्टर राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की खंडपीठ को ये बताया कि जो जस्टिस यूयू ललित उदय उमेश ललित है, ये किसी मामले में कोई क्रिमिनल मैटर में पेश हुए थे। राजीव धवन ने ये जरूर बोला कि उनको रिक्यूज करना चाहिए, और इसके बाद तुरंत जस्टिस यूयू ललित ने कहा ओके आई एम रिक्यूजिंग फ्रॉम द केस, यानी कि मैं इस केस से खुद को अलग करता हूँ, मैं इस केस को सुनवाई में जरूर नहीं रहूंगा। इसके तुरंत बाद सीजेआई ने धवन की बात को सहमति जताते हुए इन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर अब यूयू ललित रिक्यूज करेंगे तो ये दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि दूसरी बार जो बेंच है इसकी गठन करना पड़ेगा।
इस मामले में जो दूसरा पक्ष है वो मुस्लिम पक्षकारों पर अब ये आरोप लगा रहा है कि मुस्लिम पक्षकार मामले को डिले करना चाहते हैं।
देखिए ये तो डिले टैक्टिक्स के एलिगेशन लगाते हुए, लेकिन ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सोचना है और ये उनको तय करना है कि कौन डिले चाहता है।
सर यहाँ पे एक चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जस्टिस यूयू ललित को इस बारे में जानकारी जरूर है कि वो किस किस मामले में पहले पेश हुए थे, तो जब उनका नाम इसमें शामिल हुआ तब ये बात सामने क्यों नहीं आई?
जब ये मामला बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ यानी कि 2 दिन पहले, सबको याद होगा कि 2 दिन पहले इवनिंग में लगभग 5:15 के आसपास जब सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये डिसीजन लिया था कि 5 जज बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तब सबका लीगल एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर उस टाइम अगर देख लेते कि कौन कौन जज इसमें अगर पहले लॉयर थे, वकील थे, कोई लड़ा तो नहीं था किसकी फेवर में, तो उनको सोच लेना चाहिए था। हालांकि ये एथिकल क्वेश्चन हो जाती है, लीगली आप किसी को कंपलसरी नहीं कर सकते कि आप रिक्यूज करो, ये उनके एथिक्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो रिक्यूज करे या ना करे। हालांकि कहना चाहूंगा जरूर कि देखिए ये क्रिमिनल मैटर में पेश हुए थे, जबकि ये मैटर अभी जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की 5, ये एकदम सिविल मैटर है। सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में बहुत सारा फर्क है
जी। अब ये केस किस ओर बढ़ रहा है, अब इसकी अगली सुनवाई कब के लिए तय की गई है?
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज फिक्स किया है 29 तारीख को, यानी कि हम ये कह सकते हैं 29 तारीख को ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, या फिर 1-2 दिन पहले 25, 26 या 27 को नए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होगी और सुनवाई के लिए ये मैटर 29 तारीख को आएगी।
बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। जानकारी दे रहे थे सुचित्र मोहंती। कौन हैं जस्टिस उदय उमेश ललित जिनका नाम अचानक ही इस मामले की सुनवाई में केंद्र में आ गया है, जानने के लिए मैंने बात की बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह से और उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले जस्टिस यूयू ललित क्या करते थे।
देखिए मानसी, साल 1957 में पैदा हुए यूयू ललित यानी उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने से पहले देश की शीर्ष अदालत में वरिष्ठ वकील हुआ करते थे। 2014 में जस्टिस ललित को तत्कालीन चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई वाले कोलेजियम ने जज के पद पर नामित किया था और उनकी नियुक्ति पर मुहर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लगाई थी। 1986 में दिल्ली आने से पहले वो दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। साल 1986 से 1992 के बीच ललित ने भारत के अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ काम भी किया था।
किन किन अहम मामलों में यूयू ललित बतौर वकील पेश हुए थे?
आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसमें भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जो साल 2011 में मुकदमा चला था उसमें ये सरकारी अधिवक्ता थे। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी ये पेश हो चुके हैं, जिनमें से सबसे अहम है सलमान खान का ब्लैक बक मामला, भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, शोराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में गुजरात के तत्कालीन मंत्री अमित शाह और तत्कालीन सेना प्रमुख वी के सिंह की जो जन्मतिथि वाला विवाद मामला था उसमें भी ये पेश हुए थे।
आज जिस मामले का जिक्र वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में किया वो क्या मामला है?
आज वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कोर्ट में जिस मामले का जिक्र किया है वो तकरीबन 20 साल पुराना मामला है। ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट की अवमानना से जुड़ा मामला है जिसमें याचिका हाशिम अंसारी ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में इस आपराधिक मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। ये अवमानना याचिका पीवी नरसिम्हा राव, एसबी चव्हाण, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विजय राजेश सिंधिया और अशोक सिंघल के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए बाबरी मस्जिद को गिराया। इस याचिका पर जस्टिस जीएन रे और जस्टिस एसपी भरूचा की खंडपीठ ने 26 मार्च 1997 को आखिरी सुनवाई की थी। इसी केस में कल्याण सिंह की तरफ से यू यू ललित पेश हुए थे।
जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह। आपको याद होगा कि सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला संविधान का 124वां संशोधन कल संसद में पास हो गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक को चुनौती दी गई है। याचिका दायर की है यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के एक संगठन ने। याचिका में दावा किया गया है कि ये संशोधन संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। मामले पर और जानकारी के लिए यूथ फॉर इक्वालिटी के अध्यक्ष डॉ. कौशलकांत मिश्रा से बात की बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने।
अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है इसके दो मेन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा की जरूरत है और हम उसका समर्थन करते हैं, और नंबर टू जो है ये 50% के बियॉन्ड 10% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, हम इस सीलिंग लिमिट 50% सीलिंग लिमिट को समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो 10% कोटा है ये 50% में ही दिया जाए और इकोनॉमिक कोटा होना चाहिए, धीरे धीरे कास्ट बेस कोटा खत्म होकर के इकोनॉमिक कोटा कम्प्लीटली आना चाहिए।
तो आपका मूल आधार ये है कि जो 50% सीमा है वो बनी रहे और जो 10% ये कोटा है उसके भीतर दिया जाए
क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लास में जातियां नहीं होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में क्लासेस होते हैं। जैसे इन्होंने जाति को क्लासिफाई कर दिया कास्ट में, वैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी एक क्लास होती है जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस का पार्ट होना चाहिए।
और जो इकोनॉमिक वीकर का आर्थिक आधार रखा गया है 8 लाख रुपए तक की आय जो बताई जा रही है, आप उससे सहमत हैं?
वो अमेंडेबल है, वो तो फ्यूचर के साथ चेंज हो सकती है। तो उसपे मेन इशू क्या है? इशू ये है कि हमारा सिर्फ एक पॉइंट है कि जो जातिगत राजनीति चल रही है और जातिगत कोटा सिस्टम चल रहा है ये खत्म हो के इकोनॉमिक में चेंज हो जाए। इकोनॉमिक में क्राइटेरिया बाद में डिसाइड होता रहेगा, ये जितना कम होगा उतना बेहतर है, अगर ये इनकम टैक्स लिमिट पे आ जाए तो बेस्ट है।
आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है तो क्या आपको कोई डेट मिली है, कब इस पे सुनवाई होगी?
ये सब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का काम है, हम उसमें अभी कुछ नहीं कह सकते।
संविधान संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती, कौशलकांत मिश्र से बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा। अब रुक करते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का, जहां की एक अवैध कोयला खान में बीते 4 सप्ताह से 15 मजदूर फंसे हुए हैं। 13 दिसंबर गुरुवार के ही दिन पूर्वी जैंतिया हिल्स के लुंगथरी गांव के पास मौजूद संकरी रैट होल कोयला खदान में 15 मजदूर उतरे थे, लेकिन खदान में पानी भर जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल सके। यहां बचाव का काम बीते 28 दिन से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। सुनिए असम में मौजूद हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
मेघालय के इस जयंतिया हिल जिले की एक अंधेरी, पानी से भरी और बेहद संकरी खदान में बीते 13 दिसंबर से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। बचाव कार्य में मदद कर रही पंप निर्माता कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कोल इंडिया और उड़ीसा के साइक्लोन प्रभावित इलाकों में काम कर चुके फायर सर्विस के लोग हाई पावर पंप के जरिए रोजाना लाखों लीटर पानी खदान से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अगली सुबह फिर इस खदान में पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बचाव अभियान में जुटी एजेंसियों के लिए ये अभियान बेहद मुश्किल होता जा रहा है। खदान में चल रहे बचाव कार्य से जुड़ी ताजा जानकारी देते हुए मेघालय सरकार के प्रवक्ता आर सुसंगी ने बीबीसी से कहा,
आज जो दो पम किलोस्कार का चालू हो रहा है, एक पम कोल इंडिया का भी चालू है, फायर ओडिशा एक पंप चालू कर रहा है, पानी भी क्यों कम नहीं हो रहा है, 6 इंच कम हो रहा है वाटर लेवल राइस अगेन एंड अगेन। तो और भी वाटर लेवल जो है इधर में पहाड़ में वो भर्ती हो गया है, रैप्चर हो गया, बहुत दिक्कत है साहब, बहुत दिक्कत है। कोशिश बहुत कर रहा है, नो चेंजेस सो फार वी कुड सी, रेड होल दे हैव फाउंड, फ्रेश गोल्ड आल्सो दे हैव फाउंड, व्हिच डायरेक्शन आल्सो दे हैव गॉन इनसाइड वी डोंट अंडरस्टैंड, थॉट दैट बाय फ्यू डेज समथिंग माइट वी माइट हैव सम डेवलपमेंट।
सुसंगी कह रहे थे कि बचाव कार्य में जुटी एजेंसियां अपनी पूरी क्षमता के साथ इस खदान से मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी इसमें सफलता नहीं मिली है। खदान के भीतर गए गोताखोरों को नीचे फ्रेश कोयला मिला है, लेकिन चूहे के बिल जैसी इस खदान में वो किस दिशा में जाएं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए इन मजदूरों को बचाने में हुए विलम्ब पर नाराजगी व्यक्त की और बचाव कार्य पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल मुख्य खदान के अंदर भरे पानी को बाहर निकालना इस समय बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती है और इसी काम में अभी और वक्त लगेगा, लिहाजा ऐसी स्थिति में मजदूरों के परिवार की उम्मीदें अब खत्म होती दिख रही है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता अप्सरा रेड्डी को महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब भारत में कोई ट्रांसजेंडर किसी पार्टी के महासचिव पद पर पहुंची हैं। BBC संवाददाता मीना कोटवाल ने उनसे बात की और यहां तक पहुंचने के उनके सफर के बारे में जाना।
मैं एक साउथ इंडियन फैमिली की बिलोंग करती हूँ और माई चाइल्डहुड वॉज अ हैप्पी चाइल्डहुड, लेकिन मम्मी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। सो मुझे स्कूल पढ़ते टाइम ही मुझे लगा कि मुझे लड़की बनना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बहुत इंटरनल बैटल्स थे, लेकिन मम्मी को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो वॉज अ इशू बिकॉज पिताजी थोड़े अल्कोहलिक थे और फैमिली में इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो एक साल स्कूल से भी निकाल दिया गया मुझे। बट मुझे एक चीज़ मुझे याद है, व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ वुमन, मुझे आई डिसाइडेड दैट डे कि लोग हमें प्यार करेंगे या नफरत करेंगे तो रेस्पेक्ट तो ज़रूर करेंगे, तो उसी के लिए मैं काम करती रही। आई फॉलोड अ वेरी क्लियर पाथ, एजुकेशन और मेरे करियर में बहुत ध्यान दी।
घर में कितने लोग थे, बहन भाई कितने थे? और
मैं अकेली हूँ घर से, मॉम डैड और मेरी ग्रैंड मॉम। मॉम और ग्रैंड मॉम बहुत सपोर्ट करते थे मुझे और बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ कहा था कि तुम जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगी, लोग तुमको देख के हंसेंगे, तेरे लिए जगह नहीं होगा इंडिया में, तुम कहीं और चले जाओ।
एज अ ट्रांसजेंडर आपका कैसा एक्सपीरियंस था बाहर और यहाँ पर?
आई थिंक अभी बाहर इतना लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, यहाँ पे तो इंडिया में शायद ट्रांसजेंडर को एक जगह, हर एक के दिमाग में एक जगह है कि ये सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है या फैशन मॉडल बन सकती है, और ये सड़कों पर घूमते हैं, शादियों में नाचते हैं, ये सब चीज़ें मुझे कहा गया। आई फील इट्स चेंजिंग नाउ, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल।
पॉलिटिक्स में ही आने का क्यों सोचा आपने? आप मीडिया से जुड़ी हुई थी तो इसका क्या?
मीडिया, जब मैं जर्नलिस्ट थी मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करती, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि चाहे वो कंज्यूमरिज्म हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, चाइल्ड राइट्स हो, आई फेल्ट कैंपेन जर्नलिज्म ओके टू एन एक्सटेंट हम एक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, बट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एक पॉलिटिकल पावर होना, टू लेजिस्लेट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल पार्टी में होना, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है।
अन्ना द्रमुक से सीधा आप कांग्रेस में आई है या इससे पहले भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी?
नहीं, BJP में मुझे एक अवार्ड मिला था वुमेन्स डे के लिए, अमित शाह जी को भी मिली थी, लेकिन वन वीक टू वीक में मैं बाहर आ गई थी, मुझे वहां पे रहना अच्छा नहीं लगा, तो आई केम आउट।
अप्सरा रेड्डी से बात कर रही थी मीना कोटवाल। अब कार्यक्रम में वक्त है आपकी राय का, यानी आपकी चिट्ठियां पढ़ने का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
तो चलिए शुरू करते हैं आपकी चिट्ठियों का सिलसिला और डाक से आई चिट्ठियां हम पहले लेने की कोशिश करते हैं। तो बताइए सूर्यांशी, कौन सी चिट्ठी?
आज सबसे पहला खत जो है वो अशोक कुमार ठाकुर जी का हम ले रहे हैं, जो दरभंगा बिहार से हैं। और ये लिखते हैं कि 2 जनवरी को बीबीसी रेडियो की संध्याकालीन सभा में प्रसारित कार्यक्रम दुनिया जहां में बांग्लादेश का राजनीतिक उतार चढ़ाव पर जो जानकारी दी गई वो उन्हें बेहद पसंद आई और प्रभावित लगी।
बहुत अच्छी बात है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। और भारत के पड़ोस में बांग्लादेश है, जो आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, चुनाव हुआ, उसके परिणाम आए, तो हमें लगा कि हमको इसकी खबर आप तक विस्तार से पहुंचानी चाहिए और आपको समझाना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने इसे पसंद किया।
ये अगला खत जो भेजा है वो पवन कुमार ने भेजा है, जो बिहार पूर्वी चंपारण से लिखते हैं। और ये लिखते हैं कि ये मेरा दूसरा पत्र है और रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत की गई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर जो किताब पर जो विवेचना थी वो उन्हें बेहद पसंद आई और मानसी दास की आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ उनको तकलीफ होती है वो ये है कि वो नेपाल से आने वाला जो प्रसारण होता है बीबीसी रेडियो का वो सुन पाते हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं इसे किसी और तरह से सुन पाऊं, जिससे मुझे भी सहूलियत हो।
इसका तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट पर सुन सकते हैं, आप हमारे कार्यक्रम हमारे वेबसाइट पर आकर सुन सकते हैं, और जो बहुत दूसरे जो ऐप हैं ट्यून इन जैसे ऐप्स, उनके जरिए आप हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा आपको। और नेपाल से जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रसारण सुनाई देता है वो मीडियम वेव, और कई बार कुछ लोग जो बिल्कुल सीमा के नजदीक रहते हैं वो FM में भी सुन पाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है। लेकिन भारत में बहुत सारे हिस्सों में अब भी हमें शिकायत लगातार मिलती है कि प्रसारण साफ नहीं सुनाई देता, जिसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन शॉर्ट वेव की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से हम बंधे हैं और हम उसमें बीच बीच में कोशिश करते हैं कि उसकी क्वालिटी में सुधार हो, लेकिन वो एक तरह से हमारे हाथ में नहीं है। उस पर बहुत सारी चीज़ों का असर होता है, मौसम का असर होता है, दूसरी जो रेडियो स्टेशन से उनकी फ्रीक्वेंसी का असर होता है, कई और कारण हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप हमारे प्रसारण इंटरनेट के जरिए सुने तो आप ज़्यादा साफ सुन पाएंगे।
बिल्कुल। और आपकी राय में आगे बढ़े तो मेल्स का जो सिलसिला है अब उसे शुरू करते हैं। एक संयुक्त प्रस्तुति करवाना चाहते हैं गौतम दत्ता जी। इन्होंने मेल में लिखा है कि मंगलवार शाम की सभा का संचालन सारिका सिंह और बुधवार शाम की सभा मानसी दास ने किया। दोनों ही बहुत ही दक्षता से पूरे प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। लेकिन उनकी एक गुजारिश है कि 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा उसके अंदर बीबीसी के सभी स्टार महिला वाचक प्रस्तुतकर्ता जैसे कि सारिका सिंह, मानसी दास, मेरा नाम भी लिया है, रूपा झा, इन सभी को मिलाकर एक अतिथि के रूप में अचला शर्मा को भी लिया जाए और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन हो।
हमारी बीबीसी की जितनी महिला प्रसारक हैं इन सब को ये एक साथ सुनना चाहते हैं
8 मार्च।
8 मार्च को आइडिया अच्छा है वैसे, मतलब। लेकिन अक्सर ये होता है कि उस दिन सब लोग कहाँ हैं, किन किन ड्यूटियों पे हैं, कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ये विचार अच्छा है कि 8 मार्च का कार्यक्रम अगर हमारी जो महिला प्रेजेंटर हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस दिन हो तो ये वाकई दिलचस्प होगा। सुझाव के लिए शुक्रिया।
आगे बढ़े तो सादिक आजमी एक आलोचना लेकर आए हैं सऊदी अरब से। ये लिखते हैं कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमारी मुराद को पूरी करते हुए वात्सल राय जी ने सऊदी अरब की वर्तमान दशा में महिलाओं की भूमिका और मिली स्वतंत्रता पर समीक्षा की। लेकिन खेद की बात यह है कि दोनों पक्षों को सही तरह से नहीं रखा गया। दूर बैठे विशेषज्ञ नकारात्मक पहलू उजागर करते नजर आए। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर कार्यरत हूं और मैं देख रहा हूं कि यहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि 2 बजे तक बाहर घूम सकती हैं। तो फिर कृपा करके दोनों पहलुओं को परोसने की चेष्टा करें।
सऊदी अरब के बारे में जो भी आपकी टिप्पणी है, आप वहां रहते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही हम सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि मानवाधिकारों के मामले में, महिलाओं के अधिकारों के मामले में, और जो वहाँ पे दूसरे देशों के लोग हैं जो मजदूर हैं उनके अधिकारों के मामले में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। और जो आलोचना जो लोग कर रहे थे वो भी उसका एक पक्ष है। और जो आपने कहा वो भी दूसरा पक्ष है, अच्छा किया कि आपने लिखा, तो वो दूसरी बात भी सामने आ गई और घड़ी अब हमें इशारा कर रही है कि हमें अब आपके पत्रों का सिलसिला फिलहाल आज के लिए यहीं रोकना होगा। चलते चलते हम आपको अपना पता बताते हैं, अगर आप हमें डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। साल 1980 में आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम अब अपने खेल की जगह कोच बनाए और हटाए जाने को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहती है। इसी कड़ी में अब हरेंद्र सिंह की छुट्टी हो गई है, क्या वजह बनी इसकी, एक रिपोर्ट में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
मेरे लड़ाके मैदान में 11 के बदले 11 से खेल सकते हैं, लेकिन 11 के बदले 13 से नहीं। ये बयान था भारत के कोच हरेंद्र सिंह का, जब बीते साल भुवनेश्वर में हुए विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भारत नीदरलैंड से 2-1 से हार गया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बेहद जोर देकर इस बात को कहा। एक तो हार, ऊपर से अंपायरों पर लगाए गए आरोपों ने उनकी हालत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे कर दी, और उसी दिन से कोच के रूप में उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई, और कल वो घड़ी आ ही गई जब उनका कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया गया। तो क्या अंपायरों पर अंगुली उठाना उन्हें भारी पड़ा? हॉकी इंडिया के चयनकर्ता और अपने समय के सबसे तेज सेंटर फॉरवर्ड रहे हरबिंदर सिंह कहते हैं,
अंपायर के ऊपर ब्लेम देना एक भूल कहा जा सकता है। हम लोग गोल नहीं कर रहे, हमें चांसेस मिल रहे हैं, इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है और अंपायर को आप ब्लेम करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जब वहाँ पर रेफरल सिस्टम चल रहा है, खेल है उसके लिए दोनों टीमों को बराबर नुकसान होता है,
अंपायरों पर आरोप लगाना तो बहाना था, हरेंद्र सिंह को तो जाना ही था। उनकी कोचिंग में भारत ने साल 2016 में जूनियर विश्व कप जीता, लेकिन सीनियर टीम में आकर ना तो वो एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता सके और ना ही बीते विश्व कप में भारत से यादगार प्रदर्शन करवा सके। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारतीय टीम में ही इतनी क्षमता है कि वो बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर सके? जवाब देते हैं साल 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य और दो बार भारत को एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पूर्व कोच एमके कौशिक।
हम एक गोल के मार्जिन से तो हारे हैं और हमने बेल्जियम से जो टीम अल्टीमेट चैंपियन हुई है 2-2 ड्रॉ किया है लीग मैच में, ठीक है, और हमने अपने पूल में टॉप किया, तो कैलिबर तो उस दिन भी हम कह सकते थे नहीं है, हारने के बाद क्यों कैलिबर हमको दिखता है।
दूसरी तरफ हरबिंदर सिंह कहते हैं कि कोच के रूप में हरेंद्र सिंह नाकाम रहे।
एशियन गेम जो और ये टारगेट था कि इसमें गोल्ड मेडल जीतकर डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस निराशाजनक रही। अब वो गोल्ड मेडल ना जीतने की वजह से हमें क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग राउंड में जाना पड़ेगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, और दूसरा वर्ल्ड कप में भी उम्मीद थी कि पोडियम फिनिश करेगी टीम, जिस तरह तैयारियां थी तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी।
अब भारतीय टीम 23 मार्च से होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप की तैयारी करेगी, तब तक हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन और मौजूदा विश्लेषक कोच क्रिस श्रीएलो देखेंगे और देखना है कि कोच के रूप में कांटों भरा ताज किसके सिर आता है।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त, और अब सुनिए बाकी के खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत से अपनी ही धरती पर टेस्ट सीरीज में मात झेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम फरवरी से भारत का दौरा करेगी। दोनों टीमें 2 T20 मैचों की सीरीज के बाद 5 वनडे में भिड़ेंगी। T20 रात जबकि 5 वनडे डे एंड नाइट में खेले जाएंगे। T20 मुकाबले 24 और 27 फरवरी से बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में होंगे, जबकि 5 वनडे हैदराबाद, नागपुर, रांची, मोहाली और दिल्ली में खेले जाएंगे। इसके अलावा भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम पिछले साल 6वें विश्व चैंपियनशिप खिताब की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुँच गयी है।
और अब चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासिनी से।
BBC समाचार।
बीते साल दिसंबर में बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्तों में शामिल शिखर अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिखर अग्रवाल भाजपा के स्थानीय नेता हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के कैथोलिक चर्च का कहना है कि राष्ट्रपति चुनावों के आधिकारिक नतीजों से उसके अपने नतीजे मेल नहीं खा रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जोर देकर कहा है कि अमरीका के सीरिया से सेना वापस बुलाने और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में कोई विरोधाभास नहीं है। नेपाल में मासिक धर्म की वजह से एक छोटी अंधेरी कोठरी में रहने के लिए भेजी गई एक माँ और उसके दो मासूम बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे। फिलहाल मानसी दाश समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।